ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाद्देशता। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद्भागवतम के सातवें स्कंध का अध्याय 12 और उसमें श्लोक संख्या 9 हम पढ़ेंगे। आप मेरे पीछे आप दोहराइए। ननु अग्नि प्रमदानाम् घृत कुंभ समः पुमान् सुतामपि रहो जहियान् अन्यदा यावदर्थ कृत। ननु अग्नि प्रमदानाम् घृत कुंभ समः पुमान् सुतामपि रहो जहियान् अन्यदा यावदर्थ कृत। ननु अग्निः प्रमदानाम् घृत कुंभ समं पुमान घृत कुंभ समः पुमान सुताम पे रहो जहिया अन्यदायावदर्थ कृत। ननु निश्चय अग्नि अग्नि प्रमदा स्त्री पुरुष के मन को मोहने वाली नाम नाम ही घृत कुंभ घी के बर्तन के समह समान पुमान मनुष्य सुताम अपि अपनी पुत्री के भी रह एकांत स्थान में यहियात साथ न रहे अन्यदा किसी अन्य स्त्री के साथ भी यावत जितना अर्थकृत आवश्यक हो। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा मैं अनुवाद पर स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष घी के भांडे के समान होता है, अतएव पुरुष को चाहिए कि वह सॉरी अतएव पुरुष को चाहिए कि अपनी पुत्री के साथ भी एकांत में न रहे। इसी प्रकार उसे अन्य स्त्रियों की संगति से बचना चाहिए, स्त्रियों से आवश्यक कार्य के लिए ही मिलना चाहिए अन्यथा नहीं। तात्पर्य यदि घी का बर्तन और अग्नि पास पास रखे जाए तो बर्तन का घी निश्चित रूप से पिघलेगा। स्त्री की उपमा अग्नि से और पुरुष की घी से घी के बर्तन से दी गई है। कोई कितना ही इंद्रिय संयमी केव न हो, स्त्री की उपस्थिति में उसका संयमित रह पाना लगभग असंभव हो जाता है। भले ही वह स्त्री उसकी अपनी पुत्री माता या बहन ही केव न हो, निसंदेह सन्यासी तक का मन विचलित हो जाता है। अतएव वैदिक सभ्यता पुरुषों तथा स्त्रियों के मिलन पर प्रतिबंध लगाती है। यदि कोई पुरुष स्त्री के इस संयोग के निषेध के मूल सिद्धांत को नहीं समझ सकता तो वह निरा पशु है। यही इस श्लोक का भावार्थ है। जानते हैं इस अध्याय के पूर्व वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्तव्य का वर्णन और उसका निर्वहन कैसे करना चाहिए वह वर्णन है। इसमें आश्रम चार आश्रम होते हैं, चार वर्ण आप जानते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और इसके बाद चार आश्रम होता है। एक जीवन का भी एक समाज का विभाजन है और एक अपने ही जीवन को कुछ टुकड़ों में बांट कर उसका विभाजन किया जाता है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी संन्यास, ये चार आश्रम। तो इस अध्याय में और विशेषकर इन श्लोकों में एक आदर्श एक संयमित सक्सेसफुल ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसा उसका आचरण होना चाहिए, उसकी बात की शिक्षा इसमें दी गई है। और ध्यान रखना चाहिए कि यह उपदेश स्वयं नारद जी दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। जिस समय महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ संपन्न कर रहे थे, राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किए थे, तो यज्ञ का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप होता है कथा कहना, उपदेश। तो उस राजसूय यज्ञ के स्पीकर वहां पर बोलने वाले थे नारद जी, और श्रोता के रूप में स्वयं मुख्य श्रोता के रूप में युधिष्ठिर महाराज बैठते थे। तो हम थोड़ा सा पीछे से इस श्लोक पर हम आएंगे। बड़ा कितना बढ़िया से एक ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए उसका आचरण। ब्रह्मचारी गुरु कुले बसन, एक ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता है कि गुरुकुल में निवास करे, घर पर नहीं, माता पिता के साथ नहीं, संबंधियों के साथ नहीं, कहां रहे? गुरुकुले बसन, गुरुकुल में रहना चाहिए। और दांत, दांत का अर्थ होता है उसके इंद्रियों पर निग्रह होना चाहिए, संयमित उसका इंद्रियां होनी चाहिए। और गुरुहितम, उसकी मानसिकता क्या होना चाहिए कि हमेशा गुरु का हित के सोचे। हमारे साथ ऐसा कोई आचरण नहीं होना चाहिए जिसके गुरु के सम्मान पर ठोस ठेस लगे, उसके ऑनर को हर्ट हो, ऐसा कुछ नहीं। तो उसे गुरु के हित में हो, हमेशा उसका हित चिंतन करते ही आचरण दासवद नीचो। और आश्रम में रहता है, गुरुकुल में रहता है, उसे बड़े रुआब के साथ नहीं रहना चाहिए कि कभी कभी होता है गुरुकुल में, माने भक्त लोग बनते हैं गुरुकुल में बनते हैं, लेकिन कभी होता है अपने आईआईटी का सर्टिफिकेट में साथ रखते हैं, थोड़ा बहुत होता है कि तो बर्दाश्त नहीं होता है कि हम ऐसे नहीं गली से नहीं ज्वाइन कर लिए हैं, आईआईटी खड़गपुर से ऐसे, ये ऐसा नहीं। यहाँ पर नारद जी का आचरण दासवत, एक तुच्छ सेवक का जैसा आचरण होता है, कोई भी मान सम्मान नहीं, ऐसा नहीं कि आश्रम में रहे तो हमारा पद होना चाहिए, हमारा पोजीशन होना चाहिए, वैसा गुरु सुहृद सुदृढ़ सौहार्द, गुरु के प्रति प्रेम, उसके प्रति सौहार्द, उसके अच्छी भावना हमेशा रखना है। फिर से सायं प्रातर, सायं प्रातर उपासित, सुबह के समय और शाम के समय उपासना करके गुरु की, अग्नि की, सूर्य की और अन्य देवताओं की पूजा करें। एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, सदाचार होता है ब्रह्मचारी के लिए कि संध्या के समय, सूर्योदय के समय, उस सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गुरु की, अग्नि की, सूर्य की और अन्य देवताओं की पूजा करें। संधे च उभय यत्वा जपन ब्रह्म समाहित, और समाहित होकर तीनों संध्याओं में गायत्री का जप करें, ब्रह्म समाहित होकर मन को एकाग्र करके जपे। अपना व्यक्तिगत अध्ययन जप करता है, लेकिन छंदांश धीतन और शास्त्रों का अध्ययन करे। गुरु बुलाते हैं कि पढ़ने के लिए, तो एक जगह पाठ करते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में बैठकर पाठ करे सुसमायतन, और पाठ प्रारंभ करने के बिगनिंग में और अंत में उपक्रमे अवसाने चरणो शीर्षा नमित, पाठ प्रारंभ करने के पहले, गीता पढ़ते हैं ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सम्यता पाठ होता है, हम एक बार कम से कम हम लोग करते तो पाठ प्रारंभ करने के पहले शीर्षा, शीर से चरणो नमित, अपने सिर को दोनों चरणों के बीच, गुरु के दोनों चरणों के बीच में रह कर प्रणाम, ऐसा प्रणाम। दो चरण होता है, गुरु जी खड़े ऐसा बैठे हैं तो देख लेना चाहिए कि दोनों चरणों के बीच में सिर, सिर होना चाहिए, सिर का अग्रभाग, और प्रणाम करें। और कैसा पोशाक पहने, यही पोशाक का वर्णन है, क्या क्या पहनना है, कैसे पहनना है, पोशाक कैसा धारण करना है। ऐसे नहीं कि मनमाने टी शर्ट लोग खरीद कर पहन लेते हैं, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। लिखा तो रहता है, हार्ट कहाँ लॉस्ट हुआ है पता नहीं लग, लिखने से वृंदावन में नहीं हार्ट का पता नहीं, लेकिन ठीक है। वो कैसा वस्त्र पहने आप लोग देख लीजिएगा, हम क्योंकि हमको इस श्लोक पर भी आना है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। और भोजन के विषय में सायं प्रातर चरित भक्षम, सुबह में लगभग 9-10 बजे और संध्या के समय 4-5 बजे भिक्षा के लिए निकले। सायं प्रातर चरित भक्षम, भिक्षा के लिए कलेक्ट करने के लिए जाए और जो मिले मिल जो कुछ भिक्षा में मिलता है उसे गुरवे निवेदयत, गुरु के सामने रख दे। भुंजित यदु यदि अनुज्ञात, तो जब रख दे, ऐसा नहीं कि कलेक्ट करके लाए तो हम खा लें, उसको गुरु जी के पास रख देना है तो स्वाभाविक है कि गुरु कहेंगे, आज्ञा देंगे बेटा ग्रहण कर लो, प्रसादम ग्रहण कर लो, खा लो, तब खाए। किसी दिन किसी कारण से गुरु आज्ञा देना भूल जाए या नहीं कह पाए कि खाओ, भूल जाए चाहे कोई सिखाए, तब क्या करना चाहिए। मैंने रोज रोज तो प्रतीक्षा देते हैं कि खा लो, लेकिन किसी दिन नहीं दिए तब क्या करना चाहिए। यह अधिकार नहीं है कि तो पूछे, रिमाइंड कराए गुरुजी क्या नेक्स्ट क्या, यह नहीं कर रहा है। यदि गुरुजी आज्ञा देना भूल जाए किसी कारण से तो उपवसित, शाम का समय है तो पानी पीकर सो जाए। देखिए भगवान को प्राप्त करना इतना हंस हंस कंतन पाया जिन पाया तिन्ह रोए, कृष्ण प्रेम प्राप्त ऐसे प्रायः हंसते हंसते नहीं, लोग प्रचलित है माखन बेचत बेचत हरि मिले, वह भी है कि माखन बेचने गई थी भगवान मिल गए, लेकिन यह सिद्धांत प्रायः नहीं होता है। बड़े व्यक्तियों ने अपने जीवन के विषय में कहा है, उन्होंने कैसे भगवान को प्राप्त किया। मीराबाई कहते हैं, अश्वन जल सिंच सिंच प्रेम प्रेम लता बे प्रेम लता बोई, मैंने आंसुओं के जल से अपने प्रेम लता का सिंचन मैंने किया है। तो गंभीर होना चाहिए, देखिए यहां पर कितने भारी राजस्व यज्ञ में सारी बड़े बड़े, यहां तक वर्णन किया जाए देवता लोग भी उसमें उपस्थित थे, बड़े बड़े राजर्षि मुनि तपस्वी ज्ञानी उपस्थित। वहां पर नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी का कर्त भुंजित यद अनुज्ञा तो नो चेत, यदि किसी कारण से किसी दिन गुरु जी कहना भूल जाए तो उपवशित शाम के समय पानी पीकर सो जाए। पूछने का भी नहीं कि पूछने, रिमाइंड कराएंगे देर हो रहा है। इसके बाद सुशीलो, सुशील उग्र व्यवहार नहीं होना चाहिए ब्राह्मण का, सुशील। और एक मित भूख, मित मतलब कम खाना चाहिए, ज्यादा खाने की प्रशंसा कहीं नहीं कही गई है किसी भी व्यक्ति के, उस व्यक्ति की प्रशंसा शास्त्रों में कहीं नहीं की है जो बहुत ज्यादा खाता है। मित भूख, आप लोग ध्यान, गोपाल कृष्ण महाराज जी उस दिन बोल रहे थे तो वो मित भूख के विषय में थोड़ी चर्चा किए थे, तो वो कह रहे थे, उनकी भाषा में कहते हैं, जितना भूख लगा है, जितना भूख है, अब मीटर नाप लिखना चाहिए कितना भूख है तो उसको आधा, महाराज ऐसा वर्णन कर रहे माने भूख है 4 रोटी को आप बढ़िया से खाकर डाइजेस्ट कर सकते हैं, इतना भूख आपको है तो उसको कितना रोटी खाना है, दो रोटी खाना, और रिमेनिंग जो है उसका 50% मतलब पूरे भूख का 1/4 पानी से भर दे, पानी पी ले, और रिमेनिंग जो है 1/4 अथवा रिमेनिंग का 50% उसमें हवा के संसर्ग के लिए। मित भूख सुशील आचरण, उग्र नहीं होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए। सश्रद्धान श्रद्धा प्रेम गुरु के प्रति विशेषकर। यावदर्थ व्यवहारे स्त्री सु, और जितना आवश्यक है उतना ही स्त्रियों से संसर्ग रखे, और स्त्री स्त्रियों से उतना ही संपर्क रखना है जितना अति आवश्यक है। और जो स्त्रियों में बहुत आसक्त हैं उनसे भी ज्यादा नहीं, उनसे भी उतना ही जितना कि काम है, काम हुआ उसके दूर हो जाए। वर्जयेत परमदा गाथा, स्त्री के विषय में चर्चा, स्त्री कथा को उसे न कहे, स्त्री का बहुत वर्णन है वो क्या करती है, क्या कहाँ रहती है, उसे चर्चा न कहे। अगृहस्थ बृहद व्रत, और बृहद व्रत अनेक व्रत हैं शास्त्रों में, सबसे बड़ा व्रत सबसे महत्व व्रत कहा गया है ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर, बृहद व्रत इसको कहा गया, बृहद व्रत को धारण किए। अब यह बात कह दे कि बृहद व्रत को धारण करना चाहिए, स्त्रियों से वार्ता, स्त्रियों से ज्यादा मिलना नहीं चाहिए। अब इसी बात को कई श्लोकों में क्यों नहीं, स्त्री से क्यों नहीं मिलना, क्या दिक्कत है? यदि भागवतम में, भगवद गीता में स्पष्ट भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष का लक्षण विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चय स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, उदार्स होते हैं, उनके दृष्टि में स्त्री पुरुष पशु पक्षी का भेद नहीं होता, सबके बीच में आत्मा को देखते हैं, मैं शरीर ने बीच आत्मा का दर्शन करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण अपने यशस्वी है, उसकी शोभा होती है, लेकिन यदि ब्राह्मण में दो गुण आते हैं, उसमें विद्या होती है और उसमें विनय होता है, तो उस ब्राह्मण की अतिशय शोभा बढ़ती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, गवि गाय एक पशु है, हस्तिनी हाथी, सब सब विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हर्ष सुनी चय व सुनी कुत्ता, और शोपाक जो कुत्ते का मांस खाने वाला है उसको भी, जो ज्ञानी है भाई वर्च्यू ऑफ नॉलेज वो सबको समान देखता है। वैदिक आदर्श यह है कि भेद नहीं कि वह स्त्री है पुरुष, अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, सारा अपना है, कौन स्त्री का किसे हेट क्या करना। लेकिन नारद जी देखे, नारद जी स्पीकर हैं, श्रोता मुख्य श्रोता युधिष्ठिर महाराज, कोई भी अशास्त्रीय बात वहां कही ही नहीं जा सकती है। वैसे वो सिद्ध वक्ता हैं कि कोई असंगत बात, गलत बात नारद जी के मुंह से निकल ही नहीं सकती है किसी भी प्रश्न। तो वे कहते हैं कि वर्ज स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए स्त्रियों से, कला श्लोक केश प्रसाधनम, ऐसे आज का जो श्लोक हम उस पर आते हैं। नारद जी कहते कि ननु अग्नि परमदा, स्त्री परमदा, परमदा स्त्री को कहते हैं जो कि व्यक्ति के मन को बहुत जल्दी उत्तेजित कर दे, प्रमित कर देती है, विचलित कर देती है। वह अग्नि तुल्य है, स्त्री क्या है, आग, स्त्री की तुलना आग से की गई। घृत कुंभ समह पुमान, और पुरुष कैसा है, एक ऐसा घड़ा जिसके अंदर घी रखा गया है, घृत कुंभ, जल कुंभ होता है, इसमें जल रखा जाता है, पानी रखा जाता है, गृह से प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहां कहते हैं कि यह कोई भी प्रकृति का ऐसा नियम है, यदि एक जगह घड़े में घी रखा गया है और बाजू में अग्नि प्रज्वलित होती है, तो निश्चित रूप से वो जो घी रखा गया है घड़े में उसमें वो पिघलेगा ही, उसमें ताप जाएगा और पिघलेगा ही। इसीलिए और उपदेश है, सुतामपि रहो जहियात। इसीलिए अपनी पुत्री है तो भी हमारे हाथ में कोई पन्ना था, कहाँ रखते हैं नीचे की गया। सुतामपि, श्लोक पर ध्यान रखिएगा, सुतामपि, सुताम पुत्री, एक व्यक्ति का इससे पवित्र गरिमा में कोई संबंध नहीं हो सकता है, पुत्री का और पिता का कितना पवित्र नाता है। लेकिन यहां के सुतामपि रहो जहियात, यदि अपनी औरस पुत्री है उसके साथ भी एकांत में किसी भी पुरुष को पिता को नहीं ही रहना चाहिए, अन्यदा और अन्य स्त्रियों के साथ भी। यहां उपदेश ब्रह्मचारी को दिया जा रहा है, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। लेकिन कोई कह सकता है कि हाँ एक ब्रह्मचारी एजिटेटेड हो सकता है, लेकिन पिता अपने पुत्री के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता है। सुतामपि रहो जहियात, अपनी, हालांकि ब्रह्मचारी को पुत्री नहीं होती है, एक इस क्लियर करने के लिए कि पिता है जिसकी औरस पुत्री है, उस पिता को भी सुतामपि रहो जहियात, एकांत स्थान में अविविक्त आसन पर नहीं ही बैठना चाहिए, यावद अर्थ के, और अन्य स्त्रियों से भी जितना अर्थ है उतना ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। वैदिक ग्रंथों में आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, छोटे हरिदास की कथा आप पढ़े होंगे, जूनियर हरिदास, चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम, जो समझा जाता है कि राधा रानी के पार्षद थे, साढ़े तीन लोग थे, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, सिखी माहिती, ये तीन, और आधा माना जाता था उसकी बहन थी सिखी माहिती माधवी, तीन साढ़े तीन लोग यदि राधा रानी के अन्यतम अतरंग भक्तों में से चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, तो साढ़े तीन ही लोग थे। छोटे हरिदास को, हालांकि इस भगवान के इस लीला को एज इट इज ही नहीं लेना चाहिए, भगवान कुछ भंगिमा से कुछ उपदेश देना चाहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं, कुछ वो आशय से भगवान यह लीला चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं। छोटे हरिदास को एक दिन भगवान आचार्य, भगवान के अन्यतम प्रेमी, कहे भगवान आचार्य छोटे हरिदास से, छोटे हरिदास जाओ, सिखी माहिती की प्रिय बहन माधवी देवी है, वहां से शुक्ल चावल, आरवा चावल हम लोग कहते हैं, ऑन बॉइल्ड राइस जाकर मांग लो। मायापुर आप लोग जहां जाए होंगे तो सुलभ किचन में मोटा राइस बनता है, सिद्ध राइस बनता है, वो गरीब लोगों के लिए मोटा, बड़ा आकार में ही बड़ा होता है, अच्छा नहीं माने। बढ़िया चावल मतलब कि जैसे बासमती समय कहते, वह अच्छा। भगवान आचार्य जो भगवान के अन्यतम पे, वह उनकी आज्ञा मानकर हरिदास गए, छोटे हरिदास गए, और वह भी अपने लिए नहीं, उनका आशय था भगवान चैतन्य महाप्रभु को उनको बढ़िया से बढ़िया भोजन खिलाना था, प्रसाद खिलाना था, इसलिए भगवान आचार्य ने बढ़िया से पता लगा था कि माधवी देवी के साथ बहुत बढ़िया चावल है, तो लाए। हरदास जी गए और लाए, मांग कर लाए, प्रसाद बना, तो इतना बढ़िया था कि उस चावल से भी सौरभ निकल रहा था, वो फ्रेग्रेंस निकल रहा था। चैतन्य महापुरुष खाने इतनी प्रशंसा की, इतना बढ़िया चावल है किस का। और करते करते भगवान चैतन्य महापुरुष उनसे पूछ दिया कि चावल कहाँ आपको मिला, इतना बढ़िया चावल है, तो बड़ा भगवान जरूर खाए होंगे, नैवेद्य भगवान को आपने अर्पित किया, इतना इसमें फ्रेग्रेंस है, बढ़िया सुगंध। तो बड़ा अपना छाती चौड़ा करके भगवान आचार्य तो खुश थे कि इतना बढ़िया कुकी हमने किया है, चावल माधवी देवी के पास से आया हुआ है, अरे बड़ा बढ़िया। तो फिर प्रशंसा की भगवान प्रसाद, कौन लाने गया था, तो फिर से अप्रे से छोटे हरिदास गया था टबुल कर, पैदल गया था और लाया जल्दी से। चैतन्य महाप्रसाद ने खूब प्रशंसा किए, प्रशंसा करने के बाद खाए, गए गंभीरा में गए, तो उन्होंने अपना सेवक गोविंद थे उनको बुलाया कि कह देना आज से हमारे पास वो छोटा हरिदास मेरे पास न आए कभी, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता, यह मेरी आज्ञा है, शक्ति का पालन होना चाहिए। अब महाराज चैतन्य महाप्रभु ने गंभीर बोल रहे थे कि गोविंद को साहस नहीं हुआ कि कारण पूछे, चैतन्य महाप्रभु एकदम से मैंने तो दैनिकृत था हरिदास, अन्यतम प्रेमी थे, दुष्ट आए तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि एकदम आज्ञा है तुमको, नहीं आता है कि जीवन भर तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते हैं चैतन्य, हम दृष्टि से बाहर रहना। यह सुनते ही हरिदास एकदम से तत्म मूर्छित हो गया, क्या हमसे अपराध बन गया, कोई समझ नहीं सका, वो नहीं समझता, फिगर आउट नहीं कर सके छोटे हरिदास, तो उन्होंने व्रत लिया कि ठीक है जब चैतन्य महाप्रभु हमको नहीं देखता, यह जीवन नहीं रखना है, उपवास करके मर जाना है, जिस शरीर से भगवान चैतन्य महाप्रभु में सेवा नहीं कर सकता, उनका दर्शन उस शरीर को रखने का कोई औचित्य नहीं है, उपवास बस अन्न जल का परित्याग। पता और भक्तों को, मैंने भगवान के और पार्षद थे राय रामन नीताई स्वरूप दामोदर, मैंने आखिर हुआ क्या, समझ में नहीं आ रहा था, चैतन्य महाप्रभु कुछ बोले नहीं थे, आखिर हुआ क्या, और वह उपवास उसे लोग कहे कि हरिदास छोड़ दो, भगवान नाराज हुए हैं, कभी नहीं कहू उसने उपवास क्यों करते हो, लेकिन वो अभी अड़ा हुआ था कि ना वो बनाने सब लोग भक्त मिलकर मनाने के उपवास मत करो, भगवान है तुम्हारा प्रिय, हमारे आदर्श है, प्रेमी है, किसी कारण से उनका हृदय कल परसों कभी दर्द, 3 दिन तक उपवास किया चैतन्य महाप्रभु। तुम इन्हें अब हम कथा को पूरा नहीं करना चाहते हैं, कर भी नहीं सकते समय का, चैतन्य महर्मान रहे थे और हरिदास एकदम मरने पर तुला था, तो पहले कुछ भक्त के बाद सब लोग मिल कर गए, तब पता लग गया चैतन्य महाबाद में पता लग गया कि चावल मांगने गया था उससे, भगवान आचार्य भेजे थे इसलिए, तो यह तो ये तुमने क्या तो समझ में, यह कौन सा भारी अपराध है। लेकिन फिर भी एक दिन भक्त लोग मिल गए कि वो मर जाएगा आपके बिना, भक्त है शरणागत भक्त है, उसको रख लीजिए। चैतन्य महाप्रभु आ गया कि देखिए, चैतन्य गोविंद से कहे, गोविंद लाओ हम चलो यहां से, मैं बड़ा अन्याय करता हूँ, ये बड़े भगवान को आप लोग रहो, मैं जाता हूं बस, आप लोग तब लोग नहीं 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 आप लोग नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु कहे, फिर से कोई उसके बिहाप में मुझसे कोई ये प्रार्थना किया तो मैं स्पष्ट कहता हूं मैं जगन्नाथपुरी का त्याग करके अन्यत्र चला जाऊंगा, आप लोग यहां रहिए, यह आज्ञा सुना दिया। एकदम चैतन्य एकदम थोड़ा बज नहीं हुआ थोड़ा सा, खैर जैसे तैसे हरिदास क्या हुआ आप लोग जानते हैं, प्रयाग गया और त्रिवेणी में गंगा जमुना सरस्वती के शरीर छोड़ दिया। तो जब वो लोग विनय कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही है, दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण दारवी प्रकृति हरे मुने रपिनो। दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, चैतन्य महाप्रभु कहे इंद्रियां हमारे दुर्वार है, इसे कंट्रोल अनकंट्रोल हमारी इंद्रियां हैं, बलात् विषयों को ग्रहण करती हैं। और दारवी प्रकृति हरे मुने रपिमन, दारवी का काष्ठ काठ को दारू कहते हैं। दारवी प्रकृति मतलब कि काठ की स्त्री, काठ को लकड़ी को स्त्री के भेष में कार्व कर दिया गया है। तो वह भी काठ की स्त्री भी मुने रपिमन, मुनि के मन को आकर्षित कर सकती है, ये काठ की स्त्री है। काठ लकड़ी, तो कोई कह सकता है कि अरे हाँ वो जो कपड़ा बेचने वाले बनाए हैं ना प्लास्टिक की बनाए हैं, कोई कह सकता है अरे विषयी लोगों का जो भक्त भक्त नहीं करते हैं, जप उप नहीं करते, उनका मन भले आकर्षित हो जाए, लेकिन साधु का कैसे होगा? काठ की स्त्री से प्लास्टिक की स्त्री बनाकर रखी गई है कपड़ा बेचने, उससे कैसे आकर्षित हो सकता है, उसमें कैसे आसक्ति हो सकती है? भगवान कहते हैं कि ना रे वो साधारण व्यक्ति की बात मत कहिए, मुने रपिमन, मुनि, मुनि का अर्थ है जो मौन रहता है, यथार्थ भाषण वो बोलता है, केवल और केवल भगवान के विषय में ही बोलता है, भक्ति के ही विषय में बोलता है, अन्य बोलता ही नहीं, उसको मुनि कहते हैं। अथवा मुनि का एक अर्थ है कि मननशील, जिसका मन निरंतर भगवान के लीला में, भगवान के गुण में, भगवान के रूप में ही मग्न रहता है। मुनिजन मानस हंस जय जय देव। मुनियों का मन एक की तुलना की गई है एक हंस पक्षी के रूप में, और भगवान की लीला कथा है वो जलाशय के रूप में है। तो जो हंस होता है, पक्षी होता है, क्या उस जलाशय में ही तैरता रहता, तो बाहर नहीं जाता है। तो मुनियों का जो जो साधुओं का मन है, मन के जो आयाम है, कहाँ तक तो उसको इधर विचरण करता, भगवान की लीला में, गुण में, रूप में, धाम में चिंतन करता रहता, उस स्तर पर पहुंचे हुए व्यक्ति को मुनि कहते हैं। उसका मन कभी भगवान के लीला से, भगवान के रूप से, भगवान के गुण के चिंतन से बाहर जाता ही नहीं है। लेकिन उस स्तर पर पहुंचे हुए व्यक्ति के भी मन को स्त्री, स्त्री नहीं, स्त्री जिस काठ की स्त्री आकर्षित कर सकती है। इसलिए आप नारद यहाँ के सुताम अपि जहियात, सुताम अपि रहो जहियात, अपनी पुत्री के साथ भी एकांत विविक्त अविविक्त आसन, एक ऐसा आसन जो दूर दूर है तो ठीक है, ऐसा आसन विविक्त का मतलब दूर, यहाँ अविविक्त न विविक्त मैंने सटा हुआ है, स्त्री का आसन चाहे बेड चाहे कोई चाहे पुरुष का आसन सटा हुआ नहीं चाहे ना विविक्त है, विविक्त मतलब अलग, मात्रा स्वस्था दुहित्रा वा, मात्रा स्वस्था दुहित्रा वा ना विविक्ता सुनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसम अपि कर्षति। कितना पवित्र, इससे पवित्र कोई माता का संबंध, अरे जिसके गर्भ में 10 महीने हम निकल कर रहे हैं, जिसने हमारे गर्भ में धारण किया है, जिसने अपना स्तन दूध से हमारा पालन किया है, जिससे हमारा व्यक्तित्व हुआ है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उसके प्रति दुर्भाव कैसे हो सकता है? कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि माता के प्रति हमारे हृदय में दुर्भाव, काम वासना उत्पन्न हो सकती है? स्वस्त्रा बहन जो एक ही शेयर की है, जिस गर्भ में मैं रहा हूं उसी गर्भ में हमारी माँ, हमारी बहन रही है, इतने पवित्रतम उससे हमारा कैसे माने कि उसके प्रति दुर्भाव हो सकता है, उसके प्रति हमारी खराब बुद्धि हो सकती है। और दुहित्रा पुत्री, लेकिन भागवतम में प्रभुपाद जी इसी श्लोक कोट भी किए हैं, उनके साथ भी, इन माता के साथ, बहन के साथ, पुत्री के साथ भी एकांत में नजदीक के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। बलवान इंद्रिय ग्राम इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक एक इंद्रिया बलवान है, जब एक साथ इंद्रियां जुट जाती हैं तो ये और उनका ताकत बढ़ती है और इनमें बहुत भारी कोऑपरेशन होता है इंद्रियों में। यदि कान कोई विषय को सुनता है तो आंख भी, नेत्र भी देखना चाहते हैं। प्रोटेस्ट नहीं कि आंख कान यदि विषयों के तरफ जा रहा है तो आंख प्रोटेस्ट नहीं करती, न सुनो गलती, बल्कि यह भी सहज है देखने की भी। तो हमारी जो इंद्रियां है विषयों के लिए इन्हें बड़ा भारी कोऑपरेशन है और वन से कोऑपरेटेड हो जाते, एक साथ होते, इनकी ताकत इतनी भारी बढ़ जाती है कि विद्वांसम अपि, मूर्ख की बात नहीं करते, विद्वांसम अपि कर सदी, एकदम मूर्धन्य विद्वान भी आकर्षित हो सकता है। और विश्व का, ब्रह्मांड का इतिहास है, आप लोग जानते हैं, प्रचलित कथा है, ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति, अपनी ही पुत्री थी, औरस पुत्री से उसने प्रकट किया था, उसके प्रति आग, जब वह ऐसे व्यक्तित्व की यह बात है। और दे देव बातें सुधर्म राजसूय सभा में युधिष्ठिर महाराज के सामने नारद जी कह रहे हैं, कितनी गरिमा में बातें हो रही होगी, उसकी हम कोई सीमा नहीं है, कल्पना नहीं है। लेकिन यदि प्रगति करना ही है, यदि कोई भगवान का भक्त बनना ही चाहता है तो उसके लिए एक तरह से इम्परेटिव है, आदेश है शास्त्रों का। एक जगह वो चैतन्य चरितामृत में भी कोट किया गया है, वह चैतन्य चंद्रोदय नाटक आप सुने होंगे ना, उसमें एक श्लोक कोट किया गया है, निष्किंचनस्य भगवत भजनो मुखस्य पारम परम जिगमेश्वर भवसागरस्य संदर्शनम विषयनाम अथजो सीताम च हा हंत हंत विश्वभस्म प्रसाधु। निष्किंचनस्य यह उपदेश, जो निष्किंचन है, सारे संसारिक संबंधों से एकदम जीरो उसका कनेक्शन है, कुछ भी भौतिक एसेट उसके पास नहीं है, कुछ भी भौतिक उसे कनेक्शन नहीं है, भौतिक कुछ नहीं, उसको निष्किंचन भक्त कहते हैं, उस स्तर पर जो पहुंचा हुआ है। निष्किंचनस्य भगवत भगवत भजनो मुखस्य, और वह चाहता है कि मैं पूरा पूरा भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लग जाऊं, उसके लिए उपदेश है। पारम परम जिगमशोर भवसागरस्य, और वह गंभीरता से सोच रहा है कि मैं इसी जीवन में, इसी जीवन में मुझे भवसागर के दूसरे पार, इधर है प्राकृत जगत और एक बैतरणी नदी है, उसके दूसरे साइड में भगवान का धाम है, भगवान की लीला होती रहती है। यदि पारम परम जिगमेश्वर, दो दूसरे पार जाने का इच्छुक है, भगवत धाम में प्रवेश करना चाहता है, भगवान की सेवा में लग जाना चाहता है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए संदर्शनम देखना, देखने की बात कही गई, संदर्शनम विषयना, विषय लोगों का, जो विषयों में लगे हुए, भोग विलास में लगे हुए हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य केवल यहाँ के संसार के भोगों को भोगना है, उनका, और यो सीता स्त्री का दर्शन, हा हंत हंत विश्वभस्म प्रसाद, दो आपके ऑप्शन है, या तो आप उनका दर्शन नहीं करेंगे तो दूसरे साइड में विष का गर्त है, उसमें गिर कर विष आपको खाना पड़ेगा, मर जाना पड़ेगा। मान ली आपको ऐसी स्थिति आई कि इधर देखेंगे तो आपको स्त्री का दर्शन होगा, चाहे विषय लोगों का देखेंगे, और इधर करते हैं तो उधर से कोई मुंह में विष ठूस देगा, उधर करेंगे तो विष ऐसा मारेगा, विष खाना पड़ेगा। तो चैतन्य चंद्रोदय नाटक में चैतन्य महापुरुष का हा हंत हंत विष भस्म पेशा विष खा लेना उतना बुरा नहीं है जितना विषय को देख लेना। यदि दोनों ऑप्शन है तो विष खा लेना बहुत अच्छा है। अरे वो ज्यादा से कहते हैं यह शरीर छूट जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन दूसरे बार तो, लेकिन विषय का दर्शन कर ले तो यह शरीर में तो भोगों के प्यार के जन्म जन्मांतर तक वो आकर्षण रहेगा और आप भक्ति में प्रवेश नहीं हो पाए। तो निष्किंचनस्य भगवत भजनो मुखस्य, निष्किंचन जो है निष्किंचन, आप जो निष्किंच तो आम अकिंचन गोचर कहते हैं कुंती जी, माता कुंती कहती हैं कि वो भगवान केवल अकिंचन गोचर है, केवल उसी को दिखते हैं, दूसरे को दिखते ही नहीं। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत घर है, बहुत बढ़िया कार है, सब कुछ है, लड़का भी एडमिशन भी गुरुकुल में लिया हुआ है बढ़िया से, सबसे अफोर्ड कर सकते, सब कुछ ठीक है। तो कुंती जी से पूछेंगे कि वो आप भगवान को पाएंगे नहीं, तो कहते त्वाम अकिंचन गोचरम जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी ए धमान मदह पुमान नैवार हरतिम हैं। वो पूजा करने में समर्थ नहीं होते हैं, उनकी क्षमता पूजा की भक्ति की जो पोटेंशी होती है नष्ट हो जाते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री। तो यहां भगवान कहते हैं निष्किंचनस्य, जिसके पास कोई भौतिक एसेट नहीं है, जिसका कोई भौतिक संबंध इस दुनिया में नहीं है, और वो गंभीरता से भगवत भजन उन्मुख है, 24 घंटे केवल और केवल उसका कार्य है भगवान की सेवा करना, और उसके हृदय में एक तीव्र इच्छा है कि मैं संसार सागर को पार करके भगवान के धाम में चल जाऊं, पारम परम जिगमीश्वर पार चरना करना चाहता है भव सागर को, तो उसके लिए संदर्शनम विषय विषय व्यक्ति का, व्यक्ति का और स्त्री का दर्शन, विष भक्षण से भी असाधु है। विष भक्षण कोई अच्छी चीज नहीं है, बहुत खराब है, लेकिन उससे भी खराब और दुखदायक परिणाम में स्त्री का और विषयी व्यक्ति का दर्शन। तो यह थोड़ा सा आशा ही समझ लेना चाहिए, फेनाटिक नहीं हो जाना चाहिए, आपकी गंभीरता को मेंटेन करने के लिए गंभीर रूप से भगवान के भक्ति के मार्ग में बढ़े, नियमों का पालन करें, इसलिए ऐसा करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा फेनाटिक नहीं, नहीं तो युधिष्ठिर महाराज थे, उनकी पत्नी भी थी, राज भी था, उन पर भी लागू होता था ना, हो सकता है कि द्रौपदी भी बाजू में बैठी होगी, बैठी तो होगी, कथा हो रही है तो उनकी बहन, भगवान की बहन सुभद्रा भी वहां बैठी होगी, सेवा में थी, लेकिन यह वहां बात कहता तो फेनाटिक, फेनाटिक शब्द का प्रयोग होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, आशय समझना चाहिए, गंभीरता से हमें यदि भक्ति प्राप्त करना है तो जैसे मीराबाई हंस हंस प्रेम लता बोई, आंसुवन जल सींच सींची प्रेम लता बोई, मैंने इस प्रेम लता को वृद्धित किया है, कैसे आंसुओं के जल से सींच सींच कर, हंस हंस कंतन पाया जिन पाया तीन रोज, कृष्ण एक बार मिलते हैं जरूर, लेकिन रुला कर मिलते हैं, मिलते थे जरूर। देखिए विश्व का सबसे बड़ा आचार्य श्रील प्रभुपाद, देखिए इतना पैसा नहीं था कि एयरप्लेन का टिकट खरीद सके, अरे एयरप्लेन का टिकट का वो मालवाहक जहाज में गए थे, आप लोग भी जाते हैं मायापुर जाते हैं तो देर हो रहा है, मैंने असुविधा है, सेवा है, झट से दिल्ली जाकर फ्लाइट लेकर चले जा। प्रभुपाद जी की क्या स्थिति थी, कोई साथ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, वहां जाने के बाद किस दयनीय अवस्था में रहना पड़ा, कैसे कैसे रहना पड़ा, तो भगवान मिले, सफलता मिले कि एक बार रुला कर ही मिलते हैं, हंस हंस कंत न पाए। तो यह सब जो कुछ ये कहा गया है कितना भारी, या खासकर विशेषकर वह ब्रह्मचारी का है, इसलिए हम उसको सायं प्रातर चरैद भक्षम, सुबह में और शाम को दो बार। ऐसा नहीं कि सुबह में गए मांग लिए उसी को शाम के लिए रख लिए, ये संग्रह नहीं करना है। कैसा नहीं संग्रह नहीं कर रहे हैं, चलो भाई क्या दोबारा जानना, एक बार मांग कर रहे हैं शाम के लिए भी उसी को खा लेना तो ठीक है। अभी समय तो बीत गया है, नहीं तो हमें कथा कहना चाहते, वास्तव हम कथा ही कहना चाहते थे, सोच पर आए थे चैतन्य महाप्रभु की एक लीला का वर्णन रिलेटेड है, कभी समय मिलेगा तो उस कथा को ठीक है हम यहाँ समाप्त करते हैं किसी पर। एक बात थोड़ा सुन लीजिए, एक बार आप लोग जानते होंगे नित्यानंद महाराज बड़ी बढ़िया कथा कह रहे थे, कहे तो लगभग लोग ताली बजाने ही वाले थे, एक दो बजा भी दिए थे कुछ लोग बजा ही दिए थे लेकिन अधिकांश लोग लगभग अब ताली। तब तक उन्होंने एक बात कहा कि देखिए, वो कहते हैं जब आध्यात्मिक प्रवचन होता है तो ताली नहीं बजाना चाहिए, उन्होंने कहा था हरि बोल जय से कह सक, जब कोई पॉलिटिकल प्रवचन होता है उसमें ताली बजाना चाहिए। अब स्पीकर लोग नहीं कह पाते हैं कि आपका दिल दुखेगा, लेकिन सबके मन में बात है, जितने आप उनसे पूछिए तो कोई भी ताली बजाना पसंद नहीं करते हैं, मैं भी पसंद नहीं करता हूँ जब कोई पॉलिटिकल समझते हैं ना, कोई राजनीतिक बोलते हैं, मोदी बोलते हैं, आप ताली बजाते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन कोई आचार्य प्रवचन कर रहे हैं भक्ति के विषय में तो उस समय कोई हर्ष ध्वनि व्यक्त करना चाहिए, लेकिन लेकिन आपकी स्वतंत्रता है, मैं यह मत समझे कि मैं आपको बाध्य करता हूँ, फोर्स करता हूँ, हमारा यह स्वभाव नहीं है। आप भगवान भी भगवद्गीता में बात कहते हैं, भगवान इति ते ज्ञान आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमिर्ष एतद् अशेषेण यथेक्षसि तथा कुरु। तो हम सबके विषय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं तुमको जो कुछ हमको गुहे से गुहे ज्ञान कह दिया, लेकिन हम आपको लादते नहीं हैं, थोपते नहीं हैं, विमिर्ष एतद् अशेषेण, बढ़िया से विचार कर लो और यथा इच्छसि तथा कुरु, आपकी जो इच्छा, बॉस आप हैं, मैं तो रथ हाँकने वाला हूँ, आप जैसा कर तो ठीक है। अब विलम्ब हो गया है, लगता नहीं है कि सम्पूर्ण